ये आकाशवाणी है। अब आप कनक लता से समाचार सुनिए। थलसेना के सैन्य संचालन महानिदेशक और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच आज दोपहर 12 बजे फिर बातचीत होगी। इस दौरान दीर्घकालिक संघर्ष विराम के तौर तरीकों पर चर्चा की जाएगी। कल शाम नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने इसकी जानकारी दी।
वी ऑल्सो डिसाइडेड टू फर्दर स्पीक ऑन द 12th ऑफ मे एट 1200 आवर्स टू डिस्कस द मोडालिटीज दैट वुड एनेबल द लॉन्जेविटी ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग।
डीजीएमओ ने बताया कि शनिवार दोपहर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन पर बातचीत में संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों की ओर से सीमा पार से गोलीबारी और हवाई घुसपैठ बंद हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को एक और हॉटलाइन संदेश भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ तो इसका जवाब सख्ती से और दंडात्मक तरीके से दिया जाएगा। डीजीएमओ ने जोर देकर कहा कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान की ओर से किसी भी उल्लंघन के मामले में जवाबी कार्रवाई के लिए सेना कमांडरों को पूर्ण अधिकार दिए हैं। डीजीएमओ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान की सेना और आतंकियों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए, जिसमें 100 से अधिक आतंकी मारे गए। इनमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदासिर अहमद जैसे बेहद कुख्यात आतंकी शामिल हैं। वे कंधार विमान अपहरण और पुलवामा विस्फोट में शामिल थे। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों, उनके सहायक षड्यंत्रकारियों को दंडित करने और आतंकी ढांचे को नष्ट करने के स्पष्ट सैन्य उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था।
ऑपरेशन सिंदूर वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड विद अ क्लियर मिलिट्री एम टू पनिश द परपेट्रेटर्स एंड प्लानर्स ऑफ टेरर एंड टू डिस्ट्रॉय देयर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट आई डू नॉट स्टेट हियर ऑफ कोर्स इज द ऑफन स्टेटेड डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिया and its intolerance to terror. We realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us.
एयर ऑपरेशन के महानिदेशक एयर मार्शल ए के भारती ने कहा कि दुश्मन के विमानों को सीमा के अंदर प्रवेश करने से रोका गया और कुछ विमानों को निश्चित रूप से मार गिराया गया।
As I said, their planes were prevented from coming inside our border, so we do not have the wreckage with us. But definitely, we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here.
आकाशवाणी से विशेष बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा।
अभी ऑप सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और चल रहा है, सिर्फ फायरिंग का स्टॉप करने का हुक्म दिया है और कोई मिलिट्री ऑपरेशंस लैंड, एयर और सी में नहीं हो रहे हैं। सारे अदर मेजर्स जिसमें कि इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं, वो जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी भी अभी भी अबेंस में चल रही है। आज दोपहर को 12 बजे इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओस की वार्तालाप है, उसके बाद पता लगेगा आने वाले दिनों में हमारा क्या रुख रहेगा।
इस बीच थलसेना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अन्य इलाकों में कल रात कुल मिलाकर शांतिपूर्ण स्थिति रही। सेना ने कहा कि किसी भी तरह की घटना की सूचना नहीं मिली है। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती ने विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ फोन पर चर्चा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने श्री अब्देलती को हाल के घटनाक्रमों से अवगत कराया। उन्होंने किसी भी तरह के आतंकवाद को कतई सहन न करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने भारत और मिस्र के बीच आर्थिक सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की। दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान परिचालन सामान्य रूप से जारी है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL ने परामर्श जारी किया है कि हवाई क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के निर्देश पर सुरक्षा उपायों में वृद्धि के कारण कुछ उड़ानों के कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा प्रक्रिया में लंबा समय लग सकता है। यात्रियों को संबंधित एयरलाइन के संचार चैनलों के माध्यम से अपडेट रहने, केबिन और चेक इन बैगेज के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करने का सुझाव दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। लोगों से कहा गया है कि किसी भी अज्ञात वस्तु को न छुएं, क्योंकि ये विस्फोटक हो सकते हैं। NDMA ने कहा कि अगर लोगों को कोई अज्ञात वस्तु मिले तो तुरंत स्थानीय अधिकारियों को सूचित करें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने कुख्यात खालिस्तानी चरमपंथी कश्मीर सिंह गलवड्डे को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। कश्मीर सिंह लुधियाना का रहने वाला है और वो 2016 में पंजाब के पटियाला स्थित नाभा जेल से फरार हो गया था। एनआईए ने बिहार पुलिस के साथ साझा अभियान के तहत कश्मीर सिंह को मोतिहारी से गिरफ्तार किया। वो नाभा जेल से फरारी के बाद से विदेश स्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी हरविंद सिंह संधू उर्फ रिंदा के लगातार संपर्क में था। असम में पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने कई जिलों में शानदार जीत दर्ज की है। असम राज्य चुनाव आयोग के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल पंचायत चुनाव की मतगणना में लगभग सभी जिलों में मजबूती से बढ़त बनाए हुए हैं। मतगणना रविवार सुबह 8 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई थी और इसके आज शाम तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। अमेरिका ने कल रात स्विट्जरलैंड के जिनेवा में चीन के साथ व्यापार समझौते की घोषणा की। व्हाइट हाउस के बयान में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि चीन के साथ वार्ता बहुत ही सार्थक रही और आज सौदे का विवरण साझा किया जाएगा। श्री बेसेंट ने वार्ता की मेजबानी के लिए स्विस सरकार को धन्यवाद दिया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और ईरान के बीच चौथे दौर की वार्ता कल ओमान की राजधानी मस्कट में संपन्न हुई। इसमें दोनों पक्ष फिर से बातचीत करने पर सहमत हुए। अमेरिका के पश्चिम एशिया मामलों के दूत स्टीव विटकॉफ ने बताया कि मस्कट में हुई बातचीत में अमेरिका ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से बचने के लिए अपने यूरेनियम संवर्धन को समाप्त करना होगा। हालांकि ईरान ने स्पष्ट कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। महात्मा गौतम बुद्ध के जन्मदिवस के अवसर पर विश्वभर में आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। आज ही के दिन उन्हें बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर शुभकामनाएं दी हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर बिहार में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ बोधगया के महाबोधि मंदिर परिसर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं श्रीलंका आज बौद्ध कैलेंडर के सबसे पवित्र दिन वेसाक पोया मना रहा है। नुवारा एलिया में राज्य वेसाक उत्सव मनाया जा रहा है। इस पूरे द्वीप में गहरी आध्यात्मिक भक्ति और जीवंत सार्वजनिक प्रस्तुतियों के साथ इसे मनाया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने के मद्देनजर शेयर बाजार में तेजी का माहौल है। अब से कुछ देर पहले बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 2187 अंक बढ़कर 81634 पर पहुंच गया। निफ्टी भी 673 अंक बढ़कर 24681 पर पहुंच गया। और अब खेल समाचारों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारत का अभियान 7 पदकों के साथ समाप्त हो गया है। चीन के शंघाई में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। उधर महिला क्रिकेट में भारत ने 3 देशों की एक दिवसीय श्रृंखला जीत ली है। भारतीय टीम ने कोलंबो में श्रीलंका को 97 रन से हराया। भारत की उप कप्तान स्मृति मंधाना ने शानदार 116 रन बनाए। उन्हें मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और फिरकी गेंदबाज स्नेह राणा को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 8वें दिन लड़कों की कबड्डी के फाइनल मैच में हरियाणा ने महाराष्ट्र को हराकर स्वर्ण पदक जीता। बालिकाओं की 49 किलोग्राम भार वर्ग में महाराष्ट्र की अस्मिता धोने ने क्लीन एंड जर्क में 95 किलोग्राम और ओवरऑल में 170 किलोग्राम का भार उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया। तमिलनाडु ने बालिका वर्ग फुटबॉल के पहले सेमीफाइनल में हरियाणा को हराकर फाइनल में जगह बनाई। उधर दिल्ली में कल जिम्नास्टिक्स में क्वालिफाइंग मुकाबले खेले गए। तालिका में महाराष्ट्र 30 स्वर्ण और 25 रजत सहित 80 पदकों के साथ शीर्ष पर है। आज खेलों के 9वें दिन खिलाड़ी मुक्केबाजी, टेनिस और तलवारबाजी की स्पर्धाओं में भाग लेंगे। आज 2 नए मार्शल आर्ट खेल कलाटी पयट्टू और थांगता भी खेले जाएंगे।
मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। देश के उत्तर पश्चिमी, मध्यवर्ती, पूर्वी और दक्षिण इलाकों में आज तेज हवा और बिजली की गरज के साथ बारिश की संभावना है। असम, मेघालय और पंजाब के अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। बिहार में अलग अलग स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।